ओम शांति। अव्यक्त मुरली 3 दिसंबर 1984। अव्यक्त बाप दादा की कुमारों से मुलाकात, ग्रुप नंबर 2। कुमार सदा निर्विघ्न होना, माया आकर्षित तो नहीं करती, कुमारों को माया अपना बनाने की कोशिश बहुत करती है, माया को कुमार बहुत पसंद आते हैं, वह समझती है मेरे बन जाए। लेकिन आप सब तो बहादुर हो ना, माया के मुरीद नहीं, माया को चैलेंज करने वाले। आधा कल्प माया के मुरीद रहे, मिला क्या, सब कुछ गवा दिया, इसलिए अभी प्रभु के बन गए। प्रभु का बनना अर्थात स्वर्ग के अधिकार को पाना, तो सभी कुमार विजय कुमार है। देखना कच्चे नहीं होना, माया को कुमारों से क्या है, प्यार लगाओ नफरत। माया को कुमारों से एक्स्ट्रा प्यार है, इसलिए चारों ओर से कोशिश करती है। क्या कोशिश करती है? चारों ओर से कोशिश करती है मेरे बन जाए। लेकिन आप सबने संकल्प कर लिया, जब बाप के हो गए तो निस्फुरने हो गए। सदा निर्विघ्न भव, उड़ती कला भव। अव्यक्त मुरली 3 दिसंबर 1984। कुमारों से मुलाकात, ग्रुप नंबर 2। बाबा कह रहे हैं कुमार सदा निर्विघ्न होना, माया आकर्षित तो नहीं करती, कुमारों को माया अपना बनाने की कोशिश बहुत करती है, माया को कुमार बहुत पसंद आते हैं, वह समझती है मेरे बन जाए। लेकिन आप सब तो कौन हो, बहादुर हो ना, माया के मुरीद नहीं, मुरीद अर्थात मुरीद अर्थात मुरीद अर्थात फॉलो करने वाले, माया के अनुयायी, मुरीद अर्थात चेला या शिष्य। तो माया के मुरीद नहीं, माया को चैलेंज करने वाले। आधा कल्प माया के मुरीद रहे, मिला क्या, क्या उत्तर दिया बाबा ने? आधा कल्प माया के मुरीद रहे, मिला क्या। यहां पर उत्तर क्या दिया? एक तो दुख मिला, और क्या मिला? दुख अशांति, नीचे उतरते गए। बाबा कह रहे सब कुछ गवा दिया, इसलिए अभी प्रभु के बने हो। प्रभु का बनना अर्थात स्वर्ग के अधिकार को पाना, तो सभी कुमार विजयी कुमार है। देखना कच्चे नहीं होना, माया को कुमारों से एक्स्ट्रा प्यार है, अतिरिक्त स्नेह, इसलिए चारों ओर से कोशिश करती है मेरा बन जाए। लेकिन आप सबने संकल्प कर लिया है, जब बाप के बन गए तो निस्फुरने हो गए। निस्फुरने अर्थात निस्फुरना, कोई चिंता नहीं, कोई फूरना नहीं। वैसे फूरना का दूसरा एक अर्थ होता है कंपन, फूरन। फूरन का अर्थ होता है कंपन, कंपित होना। तो निष्कंप, अकंप, अकंपित, पर यहाँ अर्थ है निश्चिंत, अर्थात कोई फूरना नहीं, कोई वो, कोई चिंता नहीं, कोई ओना नहीं। तो बेफिक्र, जब बाप के हो गए तो निस्फूर्ण हो गए। सदा निर्विघ्न भव उड़ती कला भव। तो बाबा कह रहे हैं कुमार सदा निर्विघ्न है, माया आकर्षित तो नहीं करती, कुमारों को माया अपना बनाने की कोशिश करती है, माया को कुमारों से एक्स्ट्रा प्यार है। माया अर्थात कुमारों के लिए कौन सी बात है? माया आकर्षण विकार, काम विकार। तो माया आकर्षित तो नहीं करती, कुमारों को माया अपना बनाने की बहुत कोशिश करती है, माया को कुमार बहुत पसंद है, बहुत समझती है मेरे बन जाए। बाबा ने यहाँ जो प्रश्न पूछा है, आधा कल्प माया के मुरीद रहे, मिला क्या सब कुछ गवाया, अर्थात विकारों के अधीन जो भी कर्तव्य किए उससे सब कुछ गवाया। जो कुछ विकारों के संकल्पों के अधीन होकर कर्म किए गए उससे नुकसान ही हुआ। द्वापर से अगर अब तक हुआ है, अगर अब भी किए वही संकल्प और वही कर्म जिसमें विकारों की बदबू है, तो क्या होगा? सब कुछ गवा देंगे। माया का जो आकर्षण है, अभूतपूर्व आकर्षण है, जैसे व्यक्ति आगे बढ़ते जाते हैं अध्यात्म में, उसकी माया उतनी ही उसके लिए सूक्ष्म होती जाती है। एक तरफ वैराग बढ़ता है तो उस तरफ माया भी अपना रूप बदलती है। एक तरफ जितने हम योगी बनते हैं उतना माया का रूप वहां परिवर्तित होता है। माया भिन्न भिन्न रूप से आएगी। आज जो माया आने वाली है, जिस रूप से वो कल आई थी उस रूप से नहीं आएगी, परंतु उसका स्वभाव वही रहेगा, परंतु उसका जो स्वरूप है ऊपर का वह भिन्न होगा। इसके लिए उसको जानना, उसको पहचानना, ये बहुत जरूरी है। आधा कल्प माया के मुरीद रहे, माया के चेले, माया के शिष्य, माया को फॉलो करने वाले, माया के अनुयायी, माया के वश, माया के अधीन, मिला क्या? क्या मिला? सब कुछ गवा दिया। सब कुछ का अर्थ आंतरिक सुख, आंतरिक शांति, प्रेम, आनंद, सब कुछ गवा दिया। तो बाबा कह रहे सभी कुमार विजयी कुमार है। देखना कच्चे नहीं होना। कच्चा कौन बनाता है? बाबा भर्तरी को याद करते हैं मुरलियों में, राजा गोपीचंद को याद करते हैं और भर्तरी को याद करते हैं। भर्तरी की वैराग शतकम किताब है, जिसमें वैराग के बारे में जो कुछ लिखा हुआ है वैसा वैराग के बारे में और कभी किसी किताब में किसी ने नहीं लिखा, इतनी वैराग पूर्ण बातें हैं। परंतु यही राजा भर्तरी कभी एक भोग विलासी राजा था। जब वो भोग विलास में डूबा हुआ था तब भी उसने एक किताब लिखी थी, वो थी श्रृंगार शतकम। श्रृंगार शतकम जो किताब है वो भोग विलास की पराकाष्ठा है। जितनी भोग विलास की बातें उसने लिखी है आज तक इस संसार में उतनी किसी ने नहीं लिखी। उसके सामने चार्वाक जो फिलॉसफी है वो फीका पड़ जाता है। इपिक्यूरियन, विदेश में इपिक्यूरियन फिलॉसफी है। इपिक्यूरियन अर्थात खाओ पियो और मौज करो, यह जीवन का सार है। चार्वाक फिलॉसफी भारत में है, अवैदिक धर्म में चार्वाक आता है, खाना पीना और मौज करना, यही जीवन का सार है, भगवान और ये सब व्यर्थ है, ये है चार्वाक। परंतु भर्तरी ने इन सबको पीछे छोड़ा है उसने। तो ऐसा भोगी विलासी राजा और जब वैराग को प्राप्त होता है तब भर्तरी वैराग शतकम लिखता है। उसकी वैराग शतकम की मुकाबले में और कोई किताब इस संसार में है नहीं, जो इस क्लास में भी हमने कभी थोड़ी थोड़ी पढ़ी थी, बहुत भारी पॉइंट्स है उसने वैराग के बारे में। यह वैराग्य, यह भर्तरी जब एक बार साधना कर रहा था जबकि उसने सब कुछ छोड़ चुका है। वो जमीन पर सोता है, कंदमूल फर खाता है, संसार के लोगों से कोई संपर्क नहीं है, जंगल में रहता है। ऐसी वैराग की उसकी भावनाएं है, दिखाया है एक बार बैठा है तपस्यारत, और अचानक उसकी आंख पड़ती है एक हीरे की ओर, जो कि वो तो बैठा है चट्टान पर, वहां से एक पगडंडी जा रही है, वहां पर एक हीरा चमक रहा है। अचानक मन में संकल्प आता है, क्योंकि ये वही राजा था जिसमें इतने भोग और विलास का उसने जीवन जिया था, और इतने महलों में वो रहा था, कभी स्वर्ण महलों में। अचानक संकल्प आता है कि ये हीरा जाके उठा लूं। कौन से स्थिति में, जबकि सब कुछ छोड़ चुका है, वैराग की पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ है, भगवान को पाने के अतिरिक्त मन में, जीवन में और कोई उद्देश्य और कोई लक्ष्य नहीं है, ऐसी मन की परम वैराग की अवस्था में हीरे को देखते ही मन में संकल्प आता है, जाओ और जाकर हीरे को उठा लो। एक योगी और तपस्वी के जीवन में भी ऐसे क्षण आते हैं कि पुराना सब कुछ जो भूल चुका है वो अचानक आ जाता है। उसे तो लगा सब कुछ नष्ट हो गया है, पुराना जीवन समाप्त हो गया, मैं तो सब कुछ छोड़ के आ गया हूं, पता नहीं कितने वर्ष बीत चुके हैं उस जीवन को, परंतु वो संस्कार अभी भी है। अचानक आंख उस चमकते हुए हीरे पर पड़ती है, और दिन का समय है, सुबह हुई है अभी अभी, इसके लिए हीरा और तेजी से चमक रहा है, बड़ा ही मूल्यवान और कीमती हीरा शायद होगा। और थोड़ी ही देर में वहां से दो घोड़सवार आते हैं, और उन दो घोड़सवारों की नजर भी उसी हीरे पर पड़ती है, एक इधर से और बीच में हीरा। पहला घोड़सवार कहता है, ये हीरा मेरा है क्योंकि पहले नजर मेरी पड़ी है। दूसरा कहता है, ये हीरा मेरा है क्योंकि पहले नजर मेरी पड़ी है। और देखते ही देखते भरतरी देखते रहता है दोनों को। वो ऊपर बैठा है चट्टान के ऊपर तपस्यारत, और उसकी भी नजर पड़ी थी, सबसे पहले तो उसकी ही नजर पड़ी थी, सबसे पहले तो उसे ही संकल्प आया था कि मैं इसे ले लूं। तलवारें निकलती है म्यान से, और देखते ही देखते दो लाशें बिछ जाती है। भरतरी देखता ही रहता है, सोचता है थोड़ी देर पहले अभी मैं सोच रहा था इसे लेने की, अपने ही मन को समझाता है, अपने ही मन को चेक करता है, इतना सब कुछ छोड़ दिया, इतना सारा वैराग भरा है जीवन में, फिर भी माया छोड़ती नहीं, कब कहां किस रूप में आ जाए पता ही नहीं चलती। संसार के लोगों के पास माया है वो तो ठीक है, पर तपस्वियों के पास, वैरागियों के पास भी माया नहीं आती है। माया तू जगत प्यारी, शेख पलटू करके एक संत हुआ है, शेख पलटू, जिसे द्वितीय कबीर कहा जाता है, कबीर के जैसी उसकी ख्याति भी है पलटू। वो कहता है, माया तू जगत प्यारी, परंतु हमारा तुमसे कोई काम नहीं, मेरा तुमसे कोई काम नहीं है, तू जगत की प्यारी है, सारे जगत को अपने आगोश में ले रखा है माया ने, परंतु हमारा तुमसे कोई काम नहीं। तो बाबा कहते हैं, माया आकर्षित तो नहीं करती, माया, बाबा को पता है सामने कौन बैठे, ऐसे तपस्वी कुमार, राजयोगी, राज ऋषि, योगी राज बैठे हैं सामने, दलदल से बाहर निकले हुए, दूसरों को दलदल से बाहर निकालने वाले, ऐसों को बाबा पूछ रहे हैं, बच्चे माया आकर्षित तो नहीं करती, भगवान पूछ रहा है, ऐसे ही नहीं पूछेगा, पूछ रहा है, इसका अर्थ नागेश भाई यहाँ संभावना है कभी कौन सा हीरा सामने दिख जाए, वो हीरा क्या होगा वो अभी चिंतन का विषय है, वहां तो स्थूल हीरा था, यहाँ कुछ और हो सकता है। माया मैं से संबंधित है, मेरे से संबंधित है, ये मेरा जो है किसी पर भी थोपो वहां पर माया है, मेरा को माया से, संसार की वस्तुओं से जोड़ो तो वहां माया उत्पन्न होती है, स्वर्ण से जोड़ो तो माया, मेरा स्वर्ण, मेरा घर, पद से जोड़ो मेरा पद, वहां माया, मेरा प्लस संसार की कोई वस्तु इक्वल टू माया। बाबा, बाकी जो कुछ भी वहां आएगा वो सब माया है। फिर वो मेरा त्याग, मेरी तपस्या, मेरा मधुबन, मैं मधुबन निवासी, तुम मधुबन निवासी नहीं, तुम गैर मधुबन निवासी, हम मधुबन निवासी, मेरी सेवा, तो अर्जुन पीछे चल जाएंगे, भील एकलव्य आगे बढ़ जाएगा, और ये अपने ही अहंकार और अभिमान में रहेगा, मैं राजपुत्र हूँ, मेरे पास गुरु है, मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूँ, और वो आगे निकल जाएंगे। इसके लिए मैं या मेरा के साथ में जो भी जोड़ो, आत्मा और बाबा के अतिरिक्त, वो सब कुछ माया है। मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, मेरी मुरली, मेरी वाणी, मेरा चिंतन, मेरा भाषण, मेरी सेवा, मेरा पद, मेरी आइडिया, मेरा ओपिनियन, मेरा नोशन, मेरा प्लान, ऐसा प्लान और कहीं नहीं मिलेगा, मेरी क्रिएटिविटी, मेरी रचनात्मकता, ये सारा जहां मैं को, मैं या मेरा को, ये सारी वस्तु जहां अटैच होगी, इक्वल टू माया। ये है माया की सरलतम परिभाषा, वो कुछ भी हो सकता है। फिर तो बाबा पूछ रहे हैं, माया आकर्षित तो नहीं करती? कुमारों को माया अपना बनाने की कोशिश बहुत करती है, क्योंकि उसका रूप अलग अलग है। इसके लिए समझ में नहीं आता है कि ये माया है। अगर वो हाँ पट्टी लगाकर आ जाए सिर पर उसके माया, तो पहचान में आ जाए। परंतु वो श्वेत वस्त्र धारण कर और बैच लगाकर और ब्रह्मा भोजन धारण करती है तो कैसे पता चलेगा? परंतु उसका स्वभाव हमेशा सेम है। ऊपर से रूप बदलते रहता है परंतु स्वभाव हमेशा एक ही है, और वो स्वभाव है धोखा देने का। मनुष्य बार बार धोखा खाता है परंतु जान नहीं पाता, फिर भी इतनी बार धोखा खाने के बाद भी फिर से धोखा खाता है। एक ही प्रकार की माया शायद हो सकता है, एक ही व्यक्ति को बार बार आए, फिर भी संभलता नहीं है, फिर भी होश में नहीं आता है, फिर भी गिरता है, क्योंकि उसका एक स्वभाव तो है, इतना जान लो, उसका एक स्वभाव है धोखा देने का। माया को कुमार बहुत पसंद आते, वह समझती है मेरा बन जाए, लेकिन आप सब बहादुर हो ना, माया के मुरीद नहीं, माया को चैलेंज करने वाले। और जब जिसने सोच ही लिया है माया को चैलेंज करना है, तो जो चैलेंज नहीं करते उनके पास माया नहीं आती है। संसार के व्यक्ति तो माया की गोद में ही बैठे, माया थोड़ी उनको नुकसान पहुंचाती है या फिर उनको कुछ, उनका विरोध करती है, उनके मन में संकल्प नहीं आते। वो तो जब इस ज्ञान में चल पड़ते हैं तब माया का भी एक विकराल रूप सामने आता है। जो उसकी गोद में ही है उनको कोई ज्यादा संघर्ष नहीं है। संघर्ष तो यहाँ है, सात दिन कोर्स के बाद माया का आगमन चालू होता है। तब तक तो पता ही नहीं था माया भी कुछ है,
बताते ही नहीं, तो भी अगर ही
कोर्स में बताना चाहिए कि अभी कोर्स होने के बाद जीवन में माया आनी चालू आनी होगी, तुम्हारे जीवन में माया चालू हो जाएगी, ये नहीं बताते। ये तो बाद में पता चलता है चुपके चुपके से। इधर से आ जाइए, सामने जगह। परंतु जैसे कहा, माया के स्वभाव को जान लेना है, उसका स्वभाव जो है वो क्या है, कितना उस पर विश्वास किया जाए। माया अर्थात संकल्प, कौन सा संकल्प? विकार का संकल्प। क्या विकार के संकल्प के ऊपर विश्वास किया जा सकता है? विकार का जो संकल्प है, क्या उस पर विश्वास किया जा सकता है? ऊपर से कितना ही अच्छा उसका रूप हो, नहीं किया जा सकता है। एक बिच्छू ने एक मेंढक से कहा कि मुझे तालाब के उस पार पहुंचा दो, मैं तुम्हारी पीठ पर बैठ जाऊंगा, मुझे पहुंचा दो। वो मेंढक कहता है, मैं कैसे तुम पर विश्वास करूं, तुम अगर डंक मार दोगे तो? कितना अच्छा प्रश्न पूछा है कि अगर तुम डंक मार दोगे तो मैं कैसे विश्वास करूं, अगर तुम डंक मार दोगे तो? बिच्छू कहता है, अगर मैं डंक मार दूंगा तो हम दोनों ही तो डूबेंगे ना, अगर मैं तुमको डंक मार दूं तो हम दोनों ही डूब जाएंगे, तो फिर मैं कैसे तुमको डंक मार सकता हूं? मेंढक कहता है, बात तो सही है, ये मुझे बंद कैसे मारेगा क्योंकि ये खुद भी डूबेगा। वो कहता है ठीक है। मेंढक की पीठ पर बिच्छू बैठता है और निकल पड़ती है सवार। और थोड़ी देर के बाद जब बीच तालाब के बीच में पहुंचते हैं तो मेंढक जोर से डंक मारता है और दोनों डूबने लगते हैं। तो मेंढक बिच्छू डंक मारता है और दोनों डूबने लगते हैं। तो मेंढक पूछता है कि तुमने तो कहा था मैं डंक नहीं मारूंगा, तो क्यों मारा?
स्वभाव।
बिच्छू कहता है मैं क्या करूं, मेरा स्वभाव ही डंक मारने का है। जिसका जो स्वभाव है वो करेगा। तो क्या माया अगर कहे कि मुझे साथ में ले चलो, मैं कुछ नहीं करूंगी, तुम्हारी सेवा करूंगी, सुरक्षा और सुविधा, कल कहा था ना, एक तरफ सुरक्षा और तुमको सुरक्षा प्रदान करूंगी और तुम्हारी साधन तुम्हारी सेवा करूंगी, परंतु स्वतंत्रता छीन लेगी धीरे धीरे। इसके लिए माया पर, विकारों पर, विकारों के संकल्प पर, विकारों के की कल्पनाओं पर, विकारों की कल्पना से जो सुख प्राप्त होता है, सेक्सुअल फैंटेसीज, व्यक्ति काम विकार में जाता तो नहीं है परंतु कामुक संकल्पों में विचरण करता है और उसमें विहार करता है, उन संकल्पों में रमन कर ही उसे सुख प्राप्त होता है और सोचता है कि यह विकार नहीं है। परंतु जो संकल्प में उठ रहा है और जो भाव में उठ रहा है और जो कल्पना में आ रहा है, एक दिन वही सत्य होगा, एक दिन वह साकार होगा। केवल अवसर की तलाश है, काम विकार को निरंतर अवसर की तलाश है। इसके लिए उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। काजल की कोठरी में दाग लागे ही लागे। संसार जो है वो काजल की कोठरी है। बहुत ही संभाल के यहां अपने आप को बचाना है, उसमें हमारे कपड़े श्वेत, कैसे बचाओगे? ऐसा है ये। कुमार सदा निर्विघ्न होना, माया आकर्षित तो नहीं करती। कुमारों को माया अपना बनाने की बहुत कोशिश करती है। माया को कुमार बहुत पसंद है, वह समझती है मेरा वंशज। लेकिन आप सब तो बहादुर होना, माया की मुरीद नहीं, माया को चैलेंज करने वाले। आधा कल्प माया की मुरीद रहे, मिला क्या? सब कुछ गवा दिया। कल बाबा ने मुरली में एक बहुत सुंदर प्रश्न किया था, बहुत सुंदर महावाक्य कल की मुरली में। बाप बच्चों से प्रश्न करते हैं, किस लिए? कौन बताएगा उत्तर? बाप, आप छोड़ के, बाप बच्चों से प्रश्न पूछते रहते हैं, क्यों? मंजू भाई, एक ही लाइन का उत्तर है, क्योंकि बुद्धि चलाने के लिए। यह अंधश्रद्धा का ज्ञान नहीं है कि किसी ने कुछ बोल दिया और स्वीकार कर लो, यहां बुद्धि चलाने का काम है। इसके लिए बाप बच्चों से प्रश्न पूछते हैं। क्यों पूछते? बुद्धि चलाने के लिए पूछते। इसके लिए स्वयं से प्रश्न पूछना है, किस लिए? बुद्धि चले। बैठे गए क्लास में, मुरली सुनी, सारी पॉइंट्स लिखी और आ गए, ये है पुरानी चाल। चाहे 10 साल करते रहो ऐसा या 20 साल करते रहो, वहीं रहोगे जहां हो। अपने मन को प्रश्न पूछने होते हैं, बाप बच्चों से प्रश्न पूछते हैं बुद्धि चलाने के लिए, ताकि बुद्धि चले। कब से बाप को भूले हो? सतयुग से भूले हो या द्वापर से भूले हो? बाप प्रश्न पूछते हैं, ऐसा नहीं कि बच्चों को पता नहीं, प्रश्न पूछते हैं बुद्धि चलाने के लिए। माया की प्रवेशता कब है इस ड्रामा में नागेश भाई? चंद्रशेखर भाई जी, माया की प्रवेशता कब है इस ड्रामा में? माया ने इस ड्रामा में कब प्रवेश किया? मीना सिस्टर, माया ने इस ड्रामा में कब प्रवेश किया? बाप को तुम भूले हो सतयुग से?
सतयुग से किया, तू तभी कम शुरू हो।
माया अर्थात देहभान, माया अर्थात देहभान। वास्तव में जैसे ही आत्मा इस सृष्टि मंच पर आती है, वैसे ही उसकी कलाएं तभी उसी दिन उसी क्षण उसी सेकंड उसी पल से कम होना चालू हो जाती है, परंतु आत्मा में शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि वो डायरेक्ट विकार में नहीं जाते। वास्तव में अगर देखा जाए तो रावण की प्रवेशता प्रथम दिवस से ही है, परंतु उसको रावण या माया डायरेक्ट तो नहीं कहा जाएगा, परंतु देहभान है वहां पर, देह अभिमान नहीं है। देह अभिमान तो पूरा जो देह अभिमान है वो द्वापर से चालू हो गया, वहां देह भान है, देह भान है, इसके लिए तो शादी कर रहे हैं वहां पर। शादी है या नहीं है? शादी तो है, एक काम है शादी तो है। तो परंतु आत्मा में प्यूरिटी की पावर इतनी ज्यादा है कि कोई विकार में वहां नहीं जा रहा है। इसके लिए ये कहना, इसके लिए तो बाबा प्रश्न पूछते हैं बुद्धि चलाने के लिए। तो रोज अपने आप से मुरली से प्रश्न निकालने और पूछने, जो रेडीमेड प्रश्न और उत्तर है उसको पढ़कर इतना खुश होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है।
थोड़ा हो जाओ।
हमें एक एक लाइन पूछने पर, मुरली पढ़ने की विधि है अपने मन में प्रश्न पूछो, क्यों क्यों कहा ये? ये निश्चय की बात नहीं है, निश्चय तो हो चुका है तब तो यहाँ आए ना, तब तो मुरली को इतना ध्यान और इंटरेस्ट और इतनी गहराई से पढ़ रहे, उसका निश्चय की बात नहीं है। प्रश्न हम इसलिए पूछ रहे हैं ज्ञान को समझने के लिए। एक एक प्रश्न का पूरा क्या कहते हैं उसको, डिसेक्शन, शिवोच्छेदन। देहभान कहाँ से आया? वही कह रहा हूँ कि अपने आप से प्रश्न पूछो। देहभान पहले तो किसे कहेंगे? देहभान क्या है, देह अभिमान क्या है, देह अहंकार क्या है? तीन है, देहभान, देह अभिमान, देह अहंकार। देहभान की परिभाषा बहुत 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 सूक्ष्म है। देवताओं में देहभान भी डायरेक्ट ऐसा नहीं कहा जा सकता, परंतु माया की परिभाषा क्या है फिर? माया केवल विकार तो नहीं है, माया की बहुत सूक्ष्म परिभाषा है। माया किसे कहा जाएगा? तो सब सोचने के, चिंतन करने का विषय है। तो बाबा कह रहे हैं यहाँ प्रश्न पूछा है, माया के मुरीद रहे आधा कल्प, मिला क्या सब कुछ गवाया। जिन्हें लिखने की आदत है वो लिखे, विकारों के वश हमने क्या क्या पाया, 10 पॉइंट्स, या फिर विकारों के अधीन होकर क्या क्या गवाया, क्या क्या पाया, क्या क्या पाया, क्या क्या प्राप्तियां हुई। संतोष भाई क्या क्या मिला? दुख मिला पर हमने दुख थोड़ी माना उसको, दुख माना होता तो छोड़ दिया होता। अल्पकाल का सुख मिला। कल की मुरली 70 की जो सुशील भाई पढ़ने वाली है उसमें एक बहुत पावरफुल लाइन है, वो किसी को होमवर्क में देने वाले हैं संडे के लिए। अरविंद भाई 1 नवंबर 2000, अच्छा वेलकम। हाँ नहीं, इनको देंगे विलायत से आए हैं। 1 नवंबर 1970 की मुरली, ऊपर से लेके 7 नंबर की लाइन, एक ही एक लाइन है, उस पे संडे के लिए होमवर्क करके आना, 10 मिनट उस लाइन पर बोलना, एक ही लाइन पर। 1 नवंबर 1900, नहीं आशीष भाई आप पीछे मत देखो, आप ही 1 नवंबर 1970 की मुरली, ऊपर से 7वें नंबर की लाइन, उसके ऊपर 10 मिनट के लिए बोलना है संडे को, एक ही लाइन बार बार नहीं बोलना सेवन नंबर की लाइन है, उस लाइन पर 10 मिनट चिंतन सुनाना है संडे को। मुरली कल आशीष सुशील भाई सुनाएंगे इधर, उसकी 7 नंबर की लाइन, ठीक है ना? अभी नहीं बताएंगे, वो खुद बताएंगे। होमवर्क से स्वागत तो सब कुछ गवाया, तो आज इसके ऊपर लिखना है कि विकारों के अधीन होकर, विकारों में जाकर, काम विकार में घुसकर, क्रोध में आकर, लोभ में आकर, अहंकार में आकर, आसक्तियों में आकर, हमने क्या क्या पाया, ये लिखो। कौन सा स्वर्णिम खजाना हमें मिला है वो लिखो। इसलिए अभी प्रभु के बन गए। प्रभु का बनना अर्थात स्वर्ग के अधिकार को पाना तो सभी कुमार विजयी कुमार होना देखना कच्चे नहीं होना। माया को कुमारों से एक्स्ट्रा प्यार है, इसलिए चारों ओर से कोशिश करती है मेरा बन जाए। लेकिन आप सबने संकल्प कर लिया है, संकल्प बहुत ऊंचा शब्द है हिंदी भाषा का, संकल्प अर्थात विचार नहीं। भारतीय संस्कृति में संकल्प अर्थात दृढ़ प्रतिज्ञा को कहा जाता है। संकल्प ले लिया है, संकल्प भी लेने की विधि होती है, जल से लेते हैं संकल्प। तो संकल्प किया है हमने, दृढ़ संकल्प, भीष्म प्रतिज्ञा, भीषण प्रतिज्ञा, आपने संकल्प कर लिया। जब बाप के हो गए तो निस्फुरने हो गए, निश्चिंत या निष्कंप, अकंपित, कंपायमान होने वाले नहीं। भूकंप भी आ जाए तो हम अकंपित स्थिति, सदा निर्विघ्न।